पूर्वोत्तर डायरी समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम पूर्वोत्तर डायरी में आप सभी का स्वागत है। स्वीकार कीजिए चंद्रिका जोशी का नमस्कार। पूर्वोत्तर क्षेत्र की विभिन्न जानकारियों के लिए आइए चलते हैं देश के पूर्वोत्तर के हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों की ओर, जहां आप पूर्वोत्तर की अद्भुत क्षमता, प्रकृति की सुंदरता और पारंपरिक विरासत को शब्दों के माध्यम से महसूस करेंगे। ऐसा पूर्वोत्तर जो सुंदर है, जहां सद्भाव की शक्ति है, ऐसा पूर्वोत्तर जिस पर देश गर्व करता है। तो आइए चलें पूर्वोत्तर की ओर।
पूर्वोत्तर डायरी।
सबसे पहले रुख करते हैं नागालैंड का, जहां से हमारी संवाददाता आसनो ने ये रिपोर्ट भेजी है।
केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नागालैंड के जलमार्ग क्षमताओं को सक्षम करने के उद्देश्य से प्रमुख पहल की घोषणा की है। उन्होंने मंगलवार को नागालैंड के चुमुकीदिमा में भारतीय अंतरदेश जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा आयोजित सम्मेलन में ये घोषणा की। श्री सोनोवाल ने तिजू जंगी राष्ट्रीय जलमार्ग 108 को भी विकसित करने की घोषणा की। सम्मेलन में नागालैंड के मुख्यमंत्री ने फ्यू रियो, उप मुख्यमंत्री यंतोंगो पाटोन, पर्यटन मंत्री तेमजन इमना अलोंग, लोकसभा सांसद एस सुपनमरेन जमीर, राज्यसभा सांसद फंगनोंग कोन्याक सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि नागालैंड के आर्थिक विकास के उद्देश्य से तिजू जुंगी नदी को कार्गो तथा यात्रियों का आवागमन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। श्री सोनोवाल ने सामुदायिक घाटों के साथ साथ रॉक पैक्स घाटों के व्यवहारिता का अध्ययन करने के साथ दोयांग नदी झील के विशाल पर्यटन क्षमता को विकसित करने के लिए पहल करने के भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के पर्यटन क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं असुन्यो आकाशवाणी कोहिमा।
नीति आयोग ने इस वर्ष जुलाई में संपूर्णता अभियान शुरू किया है और 3 महीने का ये अभियान 30 सितंबर तक चलेगा। इसका उद्देश्य आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में पहचान किए गए संकेतकों में एक विशेष तौर पर उनको विकसित करना है। संपूर्णता अभियान के अंतर्गत आकांक्षी जिला और ब्लॉक कार्यक्रम अल्प विकसित ब्लॉकों के प्रदर्शन और उनके आर्थिक विकास में सुधार के लिए केंद्र सरकार की एक पहल है। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए देशभर से चुने गए 500 ब्लॉकों और 112 आकांक्षी जिलों में से 3 आकांक्षी जिले मणिपुर में हैं। आइए आज हम अपने इम्फाल संवाददाता जेजे थोकसम से सुनते हैं कि मणिपुर में संपूर्णता अभियान को कैसे लागू किया जा रहा है।
द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड ब्लॉक्स प्रोग्राम अंडर संपूर्णता अभियान इज एन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द अंडर डेवलप्ड ब्लॉक।
आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए चूड़ाचांदपुर जिले के लमका साउथ की एस्पिरेशनल ब्लॉक यानी आकांक्षी जिलों की एलिसिया हमार ने कहा कि ये कार्यक्रम भारत के सबसे कठिन और अविकसित ब्लॉकों में नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए शासन में सुधार कैसे किया जाए, इस पर केंद्रित हैं।
So, in a concerted effort to drive rapid and effective development in India's most underdeveloped region, the government has launched a Sampurnata Abhiyan as part of a broader initiative of Aspirational Block Program, which is initiated by Niti Aayog. Program focuses on improving governance to enhance the quality of life of citizens in the most difficult and underdeveloped blocks of India.
संपूर्णता अभियान का उद्देश्य 6 संकेतकों यानी स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि, सामाजिक कल्याण, कौशल विकास और वित्तीय समावेशन में 100% सफलता प्राप्त करना और विकास के अंतराल को पाटना है। उम्मीद है कि मणिपुर के ब्लॉक और जिले 30 सितंबर तक अभियान के अंतर्गत अपने लक्ष्य को पूरा कर सकेंगे।
द संपूर्णता अभियान aims to bridge developmental gaps by achieving 100% saturation in 6 indicators, that is health and nutrition, education, agriculture, social welfare, skill development and financial inclusion. Let us hope that blocks and districts of Manipur fulfill their target under the Abhiyan by September last. JJ Thoksom, Akashvani News, Imphal.
नीति आयोग ने जो 500 आकांक्षी ब्लॉक और 112 आकांक्षी जिलों के प्रमुख 12 सामाजिक क्षेत्रों के लिए ये राष्ट्रव्यापी संपूर्णता अभियान शुरू किया है। इसमें स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, सामाजिक विकास, शिक्षा सहित कई विषयों पर ध्यान दिया जाना है। पहले ही दिन बड़ी संख्या में लोगों ने इस अभियान में भाग लिया। सिक्किम में संपूर्णता अभियान आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत देश के बाकी हिस्सों के साथ सोरेंग जिले में और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रमों को नामची और ग्यालशिंग में शुरू किया गया। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत सोरेंग जिले के संपूर्णता अभियान को राज्य विधायक मदन सिंटूरी ने सामुदायिक भवन जोरीथांग में शुरू किया और हमारे संवाददाता इबोमचा शर्मा ने हमें बताया कि आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत नामची जिले में किसान बाजार में अनुपा तामलिंग, जिला कलेक्टर और जिले के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में इसे शुरू किया गया। संपूर्णता अभियान के अंतर्गत त्रिपुरा में नीति आयोग के कार्यक्रम के निदेशक राजीव सिंह ने डीएम साजू वहीद के साथ ढिलाई जिले के सुदूर गंगानगर ब्लॉक में जागरूकता सह व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य आकांक्षी जिले की जनसंख्या में 6 सामाजिक मानदंडों को हासिल करना है। उधर अरुणाचल प्रदेश में उप मुख्यमंत्री चाउना मिन ने चोंगखम में नीति आयोग के नेतृत्व वाले 3 महीने के संपूर्णता अभियान की शुरुआत की और इसका लक्ष्य आकांक्षी खंडों और जिलों के अंतर्गत समावेशी विकास के लिए सरकार के समर्पण और सबसे वंचित समुदायों की आवश्यकता को पूरा करने की प्रतिबद्धता दर्शाना है। जीवन में बेहतर रंग भरने, युवा प्रतिभाओं की खोज करने और सौंदर्य और बुद्धिमता की तलाश में हाल के वर्षों में मिजोरम में मिस चापचारकूट या मिस मिजोरम का चयन युवा लड़कियों को अपने कौशल और प्रतिभा को साबित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। हमारे आइजोल संवाददाता जिन गांते ने बताया कि हाल ही में मिस यूनिवर्स मिजोरम 2024 के लिए रोहिन पुई एक उम्मीदवार रही। उन्होंने रोहिन पुई से बातचीत की, तो इस अंक में हम रोहिन पुई से ये बातचीत आपको सुनवा रहे हैं जिन्हें मिस यूनिवर्स मिजोरम का ताज पहनाया गया था।
Today we have been specially privileged to be joined by the darling girl of Mizoram, none other than Rone Pui. Rone Pui was crowned Miss Universe Mizoram 2024. She has recently finished her post-graduation in the Department of English and Literature under Mizoram University. When it comes to pageantry, she isn't a newcomer and has been entitled with Miss Freshers 2022 Mizoram University. She exudes true beauty and a talent that requires generous amount of dedication and confidence. We will get to know more about her. That is why we are doing this interview. Dear listeners, let us get to know more about her. I believe the people are curious about you, owing to the amazing threshold you have made and hopefully have inspired many others. How do you feel right now?
First of all, I feel God's favor and blessings upon me and the immense love and support I get from the people of Mizoram and even outside Mizoram has inspired me to create a good example to the next generation so that we can have a better future, and my life has jumped from a normal daily routine to the life of a beauty queen who will represent her state at a national level, and it has been filled with excitement and I am so grateful to have this platform.
Thank you so much. Of course, we understand amidst all public admiration and scrutiny must have been such a great feeling, yet overwhelming to be entitlement. We all know the dedication and discipline it takes to be truly worthy of the title, and your beauty was cherry on the icing. This interview is getting more interesting, so let us move on to the next question, Rone Pui. Our next question would be,
one message from your side, especially to all those aspiring young girls who aspire to become like you in the days to come.
Well, an army of women has inspired me to get to where I am today. But if I were to pick one person,
it would definitely be the former Miss World Priyanka Chopra, because she inspired me and made me believe that dreams can indeed come true if you are dedicated and sincere in your work, and that is what I strive for.
Thank you. I hope she will gladly receive the credit owing to the fact that you both have made India and Mizoram proud in the national and international level. No one else is going to take this title away from you, the title of Miss Universe Mizoram 2024. It will remain carved in the history of Mizoram. You have won quite a number of accolades in and of this field. What was it like? Please tell us about this journey of yours.
For the past 5 years, I'm very much involved in college and university level beauty pageant. And the times that I was not a contestant, I was at least an organizer or helped my roommate who was a contestant. And I would say that it has been a roller coaster ride where there are days that I just curled up in my bed and feel depressed because I didn't get the crown, and days when I'm very excited and motivated for the next journey. But throughout all the ups and downs, what has remained constant is my love for pageantry, which has increased and continues to grow over the years.
Now, coming to your diet routine. In fact, I am personally, once again, very curious. And of course, the things you refrain from having to maintain your overall well-being.
Well, I follow the strict routine that my dietitian Sheila Ramluni has prescribed me. It consists mostly of fruits and vegetables, and I drink at least 2 to 3 liters of water a day.
Do you incorporate yourself in going to the gym?
Before I met with an accident where my right collarbone was broken, I used to exercise every day. It gives me satisfaction and a sense of accountability. It also boosts my moods, my mindset, and gave me a sense of clarity. After I became Miss Universe Mizoram, our gym partner, Slick Gym, has put a lot of time and effort in helping me be my best self regarding my physical health and well-being.
Indeed, in fact, it reminds me of one of the proverbs, God helps those who help themselves. I think you truly deserve what you have attained. Can you tell us the kind of people you look up to? What are the qualities that attracts you most in a person besides their physical appearance? Come on, let's be completely honest with that.
To sum it all up, a mature person mentally, spiritually, and emotionally.
Okay, we are almost coming into the last session of this interview, and our next question would be, what message would you want to give to the current government in power in Mizoram?
I strongly feel that whoever is in power should practice what they preach. Who have many aspirations to have a better state that is free of corruption and job opportunities and with better infrastructure and living standard.
Which Mizo traditional attire are you looking forward present in the international platform?
I find all the Mizo traditional attire very beautiful and enchanting, and I would be very proud to represent any one of them. But right now, it mainly depends on the designers that we work with, who are the top designers in Mizoram. They are Buang Achangte, Duang Pui Mar, Ma Lui Pearl, and Fairy Outfit by Zoe. They are very dedicated and hardworking, and that is why I put my complete trust on them regarding the traditional attire.
The last question, can we know about your itinerary for the upcoming pageant?
Right now, we have been working around the clock in preparation for the national competition. We will head to the host city on the 3rd week of August, and the main event, Miss Universe India, will probably be held on the 7th of September. I want to take this opportunity to thank all the sponsors and supporters for their immense love and encouragement.
I guess you will have quite a lot in the bag. That's a long list. It is a blessing in disguise to be busy for the right reasons. With that said, we have concluded a very amazing session of getting to know the most beautiful and very inspiring Melissa Arone Puinyalo, Miss Universe Mizoram. She will be competing in the national level, that is Miss India, to represent India in the international level, Miss Universe. The entire people of Mizoram is counting on you, and we hope to see you definitely being crowned the coveted Miss Universe in the upcoming pageant 2024. Thank you. Wish you all the best. This is Preeti Gurung signing off Akashvani Aizawl.
मेघालय ने हाल ही में एक सरकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म शुरू किया है जो राज्य की प्रतिभाओं को उनके डिजिटल कंटेंट से पैसे कमाने की अनुमति देकर उनका प्रोत्साहन बढ़ाना चाहता है। मार्च महीने में केरल सरकार ने सबसे पहले शुरू किया था सी स्पेस। उसके बाद उसे शुरू किए जाने के बाद से ये रचनात्मक कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ऐसा दूसरा राज्य है जो ये अपना एक प्लेटफॉर्म शुरू कर रहा है। 12 जुलाई को इसे लॉन्च किया गया और ये हेलो मेघालय प्लेटफॉर्म मूवी, म्यूजिक, वीडियो, शॉर्ट फिल्म्स और अन्य कंटेंट उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित फिल्मों के लिए अतिरिक्त फंडिंग के साथ फिल्म निर्माताओं के लिए ये प्लेटफॉर्म प्रति फिल्म 5,00,000 रुपए तक प्रदान करेगा। कंटेंट क्रिएटर्स को अधिकतम अपलोड के लिए हर महीने 18,000 रुपए मिलते हैं और उनके द्वारा देखे जाने वाली संख्या के आधार पर और अधिक कोष प्रदान किया जाएगा। अब आशा ये है कि लघु फिल्म निर्माता यानी शॉर्ट वीडियो मेकर, शॉर्ट फिल्म मेकर भी इस प्लेटफॉर्म से लाभान्वित होंगे। इसका शुभारंभ करते हुए मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने कहा कि इसका एक अन्य उद्देश्य स्थानीय भाषा और बोलियों के प्रचार और संरक्षण को प्रोत्साहित करना है। श्री संगमा ने कहा कि ये प्रतिभाओं के लिए एक बड़ा बदलाव साबित होगा और राज्य के फिल्म निर्माताओं और संगीतकारों के लिए ये एक सुअवसर तो होगा ही।
हेलो मेघालय ओटीटी प्लेटफॉर्म, दिस अगेन यू नो वी बीन रियली थिंकिंग अबाउट दिस फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। सो ऑलमोस्ट फॉर लास्ट 2 years, ऑलमोस्ट 3 years दिस कॉन्सेप्ट हैज बीन गोइंग अराउंड। वी साइड टू वी थॉट ऑफ इट इन डिफरेंट वेज हाउ टू ब्रिंग इट आउट एंड देन अल्टीमेटली यू नो वी हैड अ first stint and we tried to work with it, it didn't work out, and then now the second level we have come and I'm happy today that finally it has got the shape that we were looking for and really the idea again is once again to be able to channelize the energy.
उन्होंने राज्य के लोगों से इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने और स्थानीय रचनात्मक प्रतिभाओं को भुगतान करने में सक्षम बनाने के लिए इस को देखने का आग्रह किया।
अगेन अ ह्यूज चैलेंज वी हैव अमंग म्यूजिशियंस ऑल्सो एंड अमंग फिल्म मेकर्स एंड वी रियलाइज दैट अगेन द फिल्म मेकर्स आर नॉट गेटिंग द काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म दैट दे डिजर्व। सो व्हाइल वी स्ट्रेटजाइज टू पुट अप मूवी थिएटर सो दैट द टिकट प्राइस कुड कम डाउन एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द रेवेन्यू कुड गो टू द फिल्म मेकर्स other programs policies like supporting them to make the movies out here so giving them financial aid for it to ensuring that you know we are able to have the film festival that we had and keep promoting it. We realized that while all of these things are happening, yet technology today is transforming the way movies and entertainment is seen, and hence it was a natural movement for us to go to the OTT platform.
राज्य के लोगों से उन्होंने कहा कि इस प्लेटफॉर्म से जुड़ें और स्थानीय रचनात्मक जो प्रतिभाएं हैं उनकी प्रतिभा को सराहें और देखें। पर्यटन मंत्री पॉल लिंगडोह ने इस अवसर पर कहा कि मेघालय की आबादी लगभग 30 लाख है और वे जानते हैं कि वे अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ आउटरीच में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं, पर श्री लिंगडोह ने कहा कि हम गुणवत्ता के साथ वो हासिल कर सकते हैं जिसकी अभी हमारे पास मात्रा में कमी है, जो हमारे फिल्म निर्माताओं, संगीतकारों, सोशल मीडिया के जो सामग्री निर्माता हैं उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने और इसके लिए भुगतान को रोकना नहीं चाहिए।
आई एम कॉन्फिडेंट दैट आवर कंटेंट क्रिएटर्स एंड द अवार्डीज विल बी ट्रूली इंस्पायर्ड टू टेक द आर्ट्स सीरियसली, टेक म्यूजिक प्रोडक्शन सीरियसली, टेक फिल्म मेकिंग सीरियसली। Very soon we will be tendering for our own cineplex here in Shillong, and we've also announced that over the next 5 years we will have these theaters in the rest of the districts of the state. So my message to our young friends today is unleash your energy and potential in the right way.
कार्यक्रम में हेलो मेघालय का एक वीडियो टीजर भी दिखाया गया। इसके बाद मेघालय कंटेंट क्रिएटर्स अवार्ड 2024 का आयोजन किया गया। मेघालय कंटेंट क्रिएटर्स अवार्ड 2024 मेघालय सरकार की ऐसी पहल है जो युवा प्रतिभाओं को सामने लाती है। इस कार्यक्रम में मेघालय ग्रास रूट्स म्यूजिक प्रोजेक्ट और हार्ड रॉक कैफे के बीच एक औपचारिक सहयोग भी शुरू किया गया। इस साझेदारी के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि मेघालय ग्रास रूट्स म्यूजिक प्रोजेक्ट और हार्ड रॉक कैफे के बीच सहयोग गेम चेंजर साबित हो सकता है, जहां हमारी युवा प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने संगीत कौशल को दिखाने का बेहतरीन अवसर मिलेगा।
I would like to see that our cultural, the musics, the traditional musics, the instrument, music instruments that we have, how can these be that connected to other parts of the country and even the world? Because that's what will be very distinct about us. You know, so that distinction has to be created. While yes, Western music and other forms of music are there, but I think the identity of our state will be in our language, in our culture, and in the different music instruments that.
प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी बातचीत में श्री संगमा ने कहा कि स्वदेशी संगीत के मिश्रण, संस्कृति के आदान प्रदान और संगीत को व्यापक स्तर पर लाने के लिए प्रधानमंत्री उत्सुक हैं, ताकि देश के संगीत को विविध स्पेक्ट्रम पर प्रदर्शित किया जा सके।
I also want to share with you that I had the opportunity to meet our honorable Prime Minister once. And I mentioned about this OTT platform to him, and he was very excited to hear about it. And he was mentioning that he would be very happy to see our local boys and girls from here who are focused on their traditional music, especially traditional music.
राज्य सरकार की ये पहल मेघालय के रचनाकारों को लोगों के सामने लाएगी और अपनी प्रतिभा और रचनात्मकता दिखाने का एक शानदार मंच प्रदान करेगी।
The initiative of the state government will provide a fantastic platform for the creators in Meghalaya to showcase their creativity to the people. The advent of OTT platforms has democratized access to local content for the citizens free of cost. This is Lamphrang Nongsphung from AIR News, Shillong.
अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य के समुदाय आधारित संगठनों यानी CBO से कहा है कि वे राज्य सरकार को आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने और राज्य के स्वामित्व वाले संसाधनों को बढ़ावा देने तथा संसाधनों को राजस्व में बदलने के लिए अपने सुझाव में सहयोग और सहायता करें। ईटानगर में CBO के साथ बैठक के दौरान श्री खांडू ने कहा कि राज्य के सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले CBO ने अतीत में भी विशेष रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बहुमूल्य सुझाव दिए हैं, जिन पर सरकार ने विचार भी किया है और राज्य के वार्षिक बजट में उन्हें शामिल भी किया है और इससे भरपूर लाभ भी देखा गया। श्री खांडू ने दो क्षेत्रों जल विद्युत और पर्यटन पर विस्तार से चर्चा की और कहा कि राज्य के स्वामित्व वाले संसाधनों के भंडार को बढ़ाने के लिए व्यवस्थित रूप से इसका दोहन किया जा सकता है। उन्होंने पड़ोसी देश भूटान की पर्यटन नीति का जिक्र किया और कहा कि वो पूरी तरह से पर्यटन और जल विद्युत पर निर्भर है। अरुणाचल प्रदेश में भी इसी तरह की नीतियां लागू की जा सकती हैं। उन्होंने CBO से आग्रह किया कि वे अपने समुदाय के सदस्यों को होम स्टे में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करें और अगर संभव हो तो उच्च श्रेणी के होटलों में भी निवेश करें, ताकि पर्यटक इसकी ओर आकर्षित हों। उन्होंने निरंतर समर्थन और व्यावहारिक फीडबैक के लिए CBO का आभार भी व्यक्त किया और कहा कि यह सुनिश्चित हुआ है कि अरुणाचल प्रदेश में हर समुदाय की अब बात सुनी जाए और उनकी चिंताओं का समाधान किया जाए और इस सहयोगात्मक भावना के माध्यम से कई बहुमूल्य सुझावों को शामिल भी किया गया है, जिससे समावेशी विकास और सतत विकास को अरुणाचल प्रदेश में बहुत प्रोत्साहन मिला है। देश भर में मौसम की बारिश जहां मन को सुकून दे रही है, वहीं कुछ राज्यों में कहीं कहीं इसे बाढ़ के रूप में भी देखा जा रहा है। राज्यों को वर्षा जल से नदियों के बढ़ते जलस्तर की समस्या से भी निपटना पड़ रहा है और साथ ही वहां के निवासियों को भी और उनकी जान माल की सुरक्षा का दायित्व निभाना भी राज्य सरकार के ऊपर है। तो असम की बात करते हैं। असम में बारहमासी बाढ़ की स्थिति ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को शुद्ध और स्वस्थ पेयजल खोजने के गंभीर मुद्दे को सामने ला खड़ा किया है। हालांकि त्रिपुरा में राजधानी अगरतला में सैकड़ों किलोमीटर दूर रहने वाले एक प्रोफेसर ने स्वच्छ और स्वच्छ पेयजल प्राप्त करने में मदद के लिए एक बेहतरीन भूमिका अदा की है। हमारे अगरतला संवाददाता कुणाल शिंदे ने ये जानकारी हमें दी है।
A professor of chemical and polymer from the Tripura University, Harjit Nath, took on the challenge of providing pure drinking water to the flood-affected people of Kachhar in Assam. Taking his own designed portable water purifier all the way to Kachhar and making use of it, Professor Nath's efforts came as boon to the distressed locals surrounded by floods all over.
Once I went, I found a lot of people, especially small children were there. And the water were given by the district authorities, but I found that it might not be that much pure to, you know, give it to small babies as well as pregnant people. So what it did is I installed my systems up there and we tried to give clean drinking water to the people. As well as we took our suitcase water system, which is solar based, and that water we specifically gave to the infants as well as the pregnant people, so that, you know, they get clean, not only clean, the ultra pure kind of water to the people.
ये एक तथ्य है कि अशुद्ध और दूषित पानी से स्वास्थ्य के सामने गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। त्रिपुरा विश्वविद्यालय के रसायन और पॉलीमर के प्रोफेसर हरजीत नाथ ने असम के कछार क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की चुनौती के बारे में कहा।
Where I have seen floods occurring quite frequently, almost every year. You know, growing up, I was quite hesitant, like, how can I help those people? 2019, we filed the first patent, which happens to be a suitcase water purifier, where we had developed a very portable water purification system, which could be taken to any location, and using solar rays, you can actually clean, you can operate the entire machine, and you can get clean drinking water.
प्रोफेसर नाथ की सामाजिक सेवा इस प्रसिद्ध कहावत के साथ बिल्कुल सटीक बैठती है कि केवल दूसरों के लिए जिया गया जीवन ही सार्थक जीवन है, क्योंकि हमें हाल के समय के उन दिनों की याद आती है जब कोविड-19 महामारी के दौरान भोजन और भोजन प्रदान करने के लिए रोबोट डिजाइन किया गया था। संकट की स्थिति में सैकड़ों लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रोफेसर नाथ द्वारा अनुकरणीय योगदान और अन्य युवाओं को नवीन तकनीक डिजाइन करने और समाज में सकारात्मक तरीके से योगदान देने के लिए अनुसंधान करने के लिए प्रेरित कर रहा है।
As it also takes back in time when he designed a robo during the COVID-19 pandemic to provide food and other items to the needy by adhering to social distancing. The exemplary contribution by Professor Nath to provide pure drinking water to hundreds of people in the crisis situation may inspire other youth to undertake research, design a technology and contribute through a positive manner to the society. Kunal Shinde from Akashvani, Agartala.
पूर्वोत्तर का समूचा इलाका हवाई सड़क और रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। कोई भी जगह अब दूर नहीं, तो परंपरा और प्रकृति के सौंदर्य से भरपूर पूर्वोत्तर राज्यों को अवश्य ही देखें और आनंद लें। आप यहां के मनोरम दृश्यों का तो आनंद लेंगे ही, साथ ही आप पूर्वोत्तर में अद्भुत आनंद, अद्भुत क्षमता और कौशल को देखेंगे और उसे महसूस करेंगे। तो अपने देश को देखिए और जानिए और चले आइए पूर्वोत्तर की ओर। अब आपसे अनुमति लेने का समय भी आ पहुंचा है। कार्यक्रम आपको कैसा लगता है हमें अवश्य बताएं। आपकी प्रतिक्रिया का हमें हमेशा ही इंतजार रहता है। हमारा ईमेल पता है airnsdtalks@gmail.com। प्रतिक्रिया और सुझाव देने के लिए हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है, नोट कीजिए 9289094044 9289094044। तो अब अगले रविवार आपसे मुलाकात होगी। अब हमें अनुमति दीजिए। आलेख और संकलन चंद्रिका जोशी, तकनीकी सहायक दानिश जैदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।